نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سیرت النبوی کے سلسلے میں اگلی نشست کا آغاز کریں گے. ہمارے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے لے کر نبوت کے ملنے تک کے واقعات کو ہم دیکھیں گے. کس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی گئیں جس نے بعد میں آپ کو ایک بہت خوبصورت انسان بنایا. ابھی تک جو چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اس میں آخری چیز جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنا خوبصورت تھا, اور آپ کے بچپن ہی میں آپ کی برکت اور آپ کی رحمت جو تھی وہ مختلف طرح سے دکھتی گئی. اور بحیرہ راہب نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو واپس لے جائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو نقصان دے. اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات کیسے تھے. تقریباً 20 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی, بہت ہی زیادہ ایک جوش اور جذبے والی عمر ہوتی ہے, تو آپ دوسرے نوجوانوں سے مختلف تھے. آپ جو عام اس دور کے لڑکوں کی رنگ رونق, رقص و سرود, جس کو آج کے دور میں اب گانا بجانا اس طرح کی محفلوں کی بات کریں, تو آپ اس سے بالکل الگ رہتے تھے. اس دور میں بہت کچھ ہوتا تھا. آپ یہ مت سوچئے کہ آج کے دور میں ہی کوئی ہم شادیوں بیاہوں پہ ناچتے گاتے بجاتے ہیں. عربوں کا تو یہ کلچر تھا راگ رنگ کے نام پر, اور اسی طرح سے بتوں کے آگے جا کے باتیں کرنی, راتوں کو محفلیں سجاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے اللہ نے ان چیزوں سے بچا دیا. بلکہ یہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے سوچا بھی کہ اچھا آج جو رات شادی ہوگی میں اس میں جاؤں گا, دیکھو تو صحیح لوگ کیا کرتے ہیں. لیکن عین جب جانے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک ایسی اونگ طاری کر دی کہ آپ پھر اس وقت سو گئے, اور اس سونے کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا وقت گزر گیا. 3 دفعہ کہتے ہیں کیسے ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے, ہم سب بھی اپنے اوپر اس کو آزما سکتے ہیں کہ کبھی گناہ کا ارادہ ہو اور وہ کام ہو نہ پائے. بس آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ کوئی گانا سنتے ہیں, کیسٹ نہیں چل رہی, سی ڈی نہیں چل رہی, نیٹ نہیں چل رہا, تو فوراً سوچیں کہ اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا میں اس وقت کوئی نافرمانی کی بات سنوں. کہیں جانا چاہتے ہیں, گاڑی کام نہیں کر رہی, کوئی بھی چیز, کپڑے استری کر رہے تھے جل گئے, اب پارٹی تو خراب ہو گئی, سوچے نہیں اللہ نہیں چاہ رہا تھا میں یہ ڈریس پہنوں. تو ہمیشہ خیر کو لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں نہ صرف یہ کہ باشعور ایک نوجوان کی صورت میں ڈھل چکے تھے, بلکہ آپ کی زندگی میں وہ سارا رنگ آ چکا تھا جو کہ کسی بھی انسان کو ایک بڑا مہذب اور با اخلاق انسان بناتا ہے. کہتے ہیں کہ جب 20 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو ذیقات کے مہینے میں اوکاس نام کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی. عرب لڑتے بہت تھے, اور آج بھی لکھ لیں, کونے میں لکھ لیں ابھی سے, جہاں دین کی روح ختم ہو جاتی ہے وہاں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. آج 2 طرح کی لڑائیاں ہمیں بھی اپنے ارد گرد دکھتی ہیں. ایک تو گھروں کے جھگڑے ہیں, شوہر بیوی بچے, میاں بیوی, آپ خود گواہیاں دیتے پھرتے ہیں کہ شادی پہ جاتے ہیں تو بعد میں لڑائی ہو کے اٹھتی ہے. خاندان کیا, شادی ہوئی لڑائی ہو گئی, وہ روٹ گیا, اس کو مناؤ, اس کو کرو. ایک تو دنیا کے جھگڑے ہیں نا آج, وجہ دین سے دوری ہے. دوسرے جھگڑے آپ کو دکھتے ہیں دین کے نام پہ, دینداروں کے جھگڑے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دین کی جب روح نہیں رہتی نا, اور لوگ صرف ناموں پہ, مسلکوں پہ اور فرقوں پہ جھگڑے کرتے ہیں تو بھی بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں. سچا دین جھگڑوں کو ختم کرنے والا ہوتا ہے. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات گئی تو آپ کو اس معاملے میں موقع ملا, آپ نے لوگوں کو سمجھایا. ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جنگ فجار کے نام پر, جس میں قریش اور کنانہ کے قبائل بھی تھے, قیس اور غیلان کے قبائل تھے. فریقین کے کئی کئی آدمی آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں آ رہے تھے, لڑائیاں ہو رہی تھیں. بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. جدھر کے لوگ زیادہ قتل ہو گئے ہیں ان کو خون بہا دے دیا جاتا ہے, دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں تشریف لائے, چچاؤں کو اپنے تیر دیتے تھے, اور اس جنگ میں حرمت کے مہینوں کی پامالی کی گئی تھی. اسی لیے فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے, ہر سال ایک واقعہ پیش آتا, اور یہ آخری واقعہ تھا جس کے اندر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے لڑائی ختم ہوئی. پھر اسی طرح آپ کی جوانی کے واقعات میں ایک واقعہ حلف الفضول کا آتا ہے. حلف الفضول کہہ لے, حلف کہتے ہیں عہد اٹھانے کو, پلج لینے کو. فضول کا لفظ ہے فضل کی جمع ہے. فضل نام کے کئی لوگ تھے جنہوں نے ایک امن معاہدہ قائم کر لیا تھا کہ اب لڑنا نہیں کرنا, ये ऐसे जैसे आज के दौर में लोग बहुत जब जंगों और लड़ाइयों से थक जाएं तो कुछ लोग बैठे कुछ मुल्कों के और कहें कि आओ एक अमन ट्रीटी करते हैं पीस ट्रीटी के नाम पे, तो उसके अंदर कोई भी लड़ेगा नहीं है। तो इस कबीले में, इस हल्फ में 5 कबीले शामिल हुए थे, बनु हाशिम, बनु मतलब, बनु सात, बनु जहरा और बनु तीम। कहते हैं कि ज़बीत जो यमन का शहर है, यहाँ के एक आदमी तिजारत का सामान लेकर मक्का आया। आस बिन वाइल ने इससे सामान खरीदा लेकिन कीमत पूरी अदा न की, और जब अल्लाह का खौफ नहीं होता तो इंसान हकदार को उसका हक नहीं देता। इसने अब्दुल दार और बनु महजूम और बनु जहम यानी कुछ कबीलों से फरियाद की कि मेरे से चीज़ें तो ले ली हैं लेकिन इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन इन लोगों ने उसकी कोई बात गौर से सुनी ना। चुनाचे पहाड़ है अबू कुबैस नाम का, उस पर खड़ा होकर इसने कुछ शेर पढ़े जिसमें अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज़ लगाई कि कोई मेरी मदद करे जो मुझे मेरा हक अदा करे। इस पर ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, ज़ुबैर जो थे नबी सल्लम के चचा थे, इन्होंने कुछ कोशिश की और सारे जमा हुए। बहरहाल ये हुआ कि जो भी लोग थे उनका हक करने देने में मदद की गई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं कि मैं उस माहदे में शामिल हुआ। क्या पता चला कि उस दौर के बूढ़े और बड़े लोगों के बीच में इस तरह की संजीदा महफिलों में अल्लाह के नबी मौजूद होते थे ताकि आप उस वक्त के मामलात और उन फैसलों का तस्फिया करवा सके। आपने फरमाया कि मैं कैसे मुआहदे में शामिल हुआ कि मुझे इसके इवज सुर्ख ऊंट भी पसंद नहीं है, और अगर इसके लिए दौरे इस्लाम में बुलाया जाता तो मैं इसको यकीनन कबूल करता। मतलब क्या है कि चाहे अमन की बात मुसलमान करे या नॉन मुस्लिम करे, मुसलमानों को उसका साथ देना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के लिए खैर का जरिया नहीं बनता बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी अमन और सुकून का जरिया बनता है। थोड़ी सी बातें अल्लाह के नबी की अमली ज़िंदगी की देखते हैं कि इस उम्र में आप कैसे थे। पीछे जैसा कि हमने देखा कि आप यतीम पैदा हुए, फिर दादा फिर चचा की किफालत में गए। वालिद से विरासत में क्या मिला होगा खुद सोच सकते हैं आप। लिहाजा ज़रा सी आपकी उम्र ऐसी हुई कि कुछ काम कर सके तो आपने अपने रज़ाई भाई जो कि बनु साद से ताल्लुक़ रखते थे उनके साथ मिलकर बकरियां चराई। यानी आपका सबसे पहला प्रोफेशन या मनी सोर्स बकरियां चराना था। नोट कीजिए, अल्लाह ने हर नबी से बकरियां क्यों चरवाईं, इसके 8-9 मुख्तलिफ फ़ायदे आपको बताए जा सकते हैं। पहली बात यह है कि जब बाद में कौमों को गाइड करना होता था ना, तो पहले अल्लाह बकरियों को चरा कर नबियों की तरबियत करता है। फिर दूसरी बात, बकरियों को चराने के अंदर, अब ये पॉइंट कल आपसे पूछे जाएंगे कि बकरियां चराने में क्या हिकमत थी नबियों की और अल्लाह के नबी क्यों चराया करते थे, तो इसमें आप देखिए कि इसमें एक तो तरबियत मतलूब थी, नबियों की तरबियत हो जाती थी ताकि बाद में कौमों को जब डील करें तो उसके साथ उनको कोई मसला ना आए। फिर दूसरी ये कि बकरियां चराना एक बड़े सब्र का काम है, सब्र इसमें आता है। तीसरी चीज़ इसमें जिम्मेदारी का एहसास, कुल्लुकुम रायुन के लफ्ज़ एक हदीस में आता है कि तुम में से हर एक चरवाहा है, शेफर्ड को कहते हैं चरवाहा। तो नबियों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता था कि देखो अब तुमने अपनी कौमों के मामले में कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना है। फिर आप देखिए कि बकरी जो होती है ना, ये जानवरों में सबसे शरीर जानवर होता है। इसकी कुछ खास आदात होती हैं जो बाद में कौम के शरीर लोगों को समझने में नबियों की मदद करती हैं। इसी तरह और बहुत सारे फवायद होते हैं बकरियों के चराने में। तो अल्लाह के नबी ने चंद किरात के इवज बकरियां चराई, यानी बड़ी मिनिमम मनी मिलती थी और बकरियां चराते थे। एक किरात जो होता है दिनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है, यानी बहुत थोड़ी सी कीमत से आपने अपने कैरियर का आगाज किया और आप जवान हुए, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने आपके लिए रास्ते बनाने शुरू कर दिए। आपका बिजनेस पार्टनर जो था साहिब बिन अभी साहिब था, और आपको पता है कि जहाँ कारोबार में शराकत होती है ना वहाँ झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन वो शख्स गवाही देता है कि आप बेहतरीन साझी थे। यानी जिस बंदे की गवाही उसका बिजनेस पार्टनर दे दे तो आप समझे कि वो बंदा अच्छा ही होगा। कहते हैं कि ना आप हुज्जत बहस करते थे ना झगड़े करते थे। अब आप इनमें से एक एक लफ्ज़ को अपने लिए कोडवर्ड बना के लिखिए, यही चीज़ें मेरे और आपके लिए एक चेकलिस्ट बनेंगी। मैं चाहूँगी कि आप सब एक चेकलिस्ट कल बना के लाएं जो आपने अपने अंदर चीज़ें लेके आनी है अल्लाह के नबी के नाते से। मैं तरतीब से कुछ बोलती हूँ चीज़ें ताकि आप उसको लिख सकें। पहली चीज़ आप देखिए कि मेहनत की आदत, किसी काम को छोटा ना समझना, अपने हाथ की कमाई से खाना, मांगने की बजाय हम हो तो तरस ही खाते फिरें, हाय यतीम बच्चा है बड़ा हो गया इसके लिए पैसे जमा करो, नहीं बकरियां चरानी पड़ी तो चरा ली। फिर बेहतरीन शराकतदार, बहस से बास, हुज्जतें नहीं करते थे, झगड़े नहीं करते थे, अपने मामलात में हद दर्जा अमानतदार थे। आज लोग कहते हैं कि कारोबार नहीं हो सकता अमानत के साथ, लेकिन अल्लाह के नबी ईमानदार थे, सच्चे थे, परहेजगार, हत्ता के सादिक और अमीन का लकब आपको मिल गया। ये खूबियाँ एक बकरियों को चरवाने वाले की ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव साबित हुई कि एक बहुत बड़ी तिजारत के मालिक बनने वाले हैं। याद रखिए एक चीज़, हमने अपने पिछले कोर्स में नूरुल्लाह नूर को सिखाई थी, याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, कि करेक्टर जो होता है ना बंदे का, किरदार, वो स्पीक्स लाउडर देन बातों के, यानी आप कहें कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मेरे अंदर अगर कोई खूबी है ना, तो आज अगर मैं जूते ठीक करने के काम से इधर आऊँगी ना, तो एक दिन आएगा कि मैं इस पूरे इदारे की मालिक बन जाऊंगी, अगर मेरे किरदार में खूबियाँ होंगी तो। कंडक्ट जो होता है ना इंसान का, इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आती है, और अगर मेरे अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं है, खूबी नहीं है ना, तो हो सकता है कोई ला के पहले दिन मुझे स्टेज पे बिठा दे और आखिरी दिन शायद कोई मुझे जूतों के पास भी ना बिठाए कि नहीं आप तो वो भी ठीक नहीं करती। तो हमेशा हमें अपनी करेक्टर बिल्डिंग पे गौर करना चाहिए। इतनी जो दौड़ धूप करके घर से निकलते हैं तो ले के क्या जाते हैं, कितना लेती हूँ, क्या उससे ज़्यादा ले सकती हूँ, कितना देती हूँ, क्या इससे ज़्यादा दे सकती हूँ, कितना दिल लगता है ब्रेक में, कितना दिल लगता है ग्रुपिंग में, लेकिन फिक्र यह है कि जो टारगेट है वो पूरा करना है। ये चीज़ हमें जमा रही है और ये चीज़ें आपके अंदर सब्र भी लाएंगी।